ओम शांति। हमारे बीच में बीके सविता दीदी बैठे हुए हैं। दीदी का हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। दीदी, आज की इस सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दीदी का परिचय इस प्रकार से है, दीदी विरंगल सब जोन इंचार्ज है। दीदी 50 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, साथ साथ दीदी बिदर कर्नाटक में दीदी को ज्ञान प्राप्त हुआ है। सविता दीदी के कनेक्शन में 11 डिस्ट्रिक्ट में 60 सेंटर है और साथ ही साथ 150 सेंटर में सरेंडर टीचर्स भी है। आज का विषय है कि वर्तमान समय की इस विकट परिस्थिति में हमें क्या पुरुषार्थ करना है, इसके बारे में आज सविता दीदी विस्तार से हमें समझाएंगे। बड़े ध्यान से आपको सुनना है और सुनते हुए अपने अंदर उसको आत्मसात भी करते जाना है। सविता दीदी,
ओम शांति। अभी हम सभी जानते हैं कि संगम युग का भी अंतिम समय चल रहा है और बाबा ने जो भी बताई हुई बातें हैं वो हम सभी सामने देख रहे हैं और सामना कर रहे हैं, लेकिन हमको अपनी स्थिति को हलचल में नहीं लाना है, क्योंकि हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, हर समय एक जैसा नहीं होता। परिस्थितियां बदलती जाती है, समय भी बदलता जाता है। ये वर्तमान समय जो अभी आ गया है ये कोई नया नहीं है। नया है नहीं है ना? आप सबको भी लग रहा होगा कि ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना। बाबा ने तो हम सबको सावधानी दे दी है कि आप सबको ऐसा समय आएगा। जब हम लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो बाबा ने कहा कि आपके लिए ही ट्रेन चलेगी। उस दिन ऐसा ही लगा कि बहुत लोग नहीं आए, बहुत कैंसल, हजारों लोग कैंसल हो गए, सिर्फ बाबा के बच्चे थोड़े बहुत यात्रा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा आपके लिए फ्री सभी ट्रेन आपके लिए चलेगी, सब साधन आपके लिए ही रहेंगे। वो समय आ गया है और परिस्थितियां और भी बदल सकती है। क्या क्या होगा हम सबको साक्षी होकर के देखना है और साक्षी रहने का अभ्यास करना है। परिस्थितियां जैसी भी आ रही हैं, हम सबको स्वीकार उसको करना ही है। हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ हम इतना कर सकते हैं हम अपनी आंतरिक स्थिति को शक्तिशाली बना सकते हैं। अब यही जरूरत है, आंतरिक स्थिति को शक्तिशाली बनाना। और आने वाले समय में बाबा ने कहा ऐसी ऐसी बीमारियां निकलेगी जिसकी दवाई ही नहीं रहेगी, सभी आपके पास आएंगे। इसकी दवाई क्या है? शांति, सुख, पवित्रता, आनंद और शक्ति। और ये दवाइयां कहाँ मिलेगी? बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे सबको मालूम पड़ गया है कि ये ब्रह्मा कुमार इसके पास ही मिल सकती है। तो फिर सभी अभी आगे चल करके आएंगे कहाँ? हमारे पास, अपने पास ही आएंगे सभी। तो फिर उन सबको देने के लिए हमको तैयारी रखनी है, हमको स्टॉक करना जरूरी है। जैसे अभी कई जगह पर सील किया हुआ है तो उनके पास स्टॉक रहेगा तो वो लोग खा भी सकते हैं, रह सकते हैं। तो अभी आने वाले परिस्थिति में और भी अलग अलग परिस्थितियां हमारे सामने आने वाली हैं। तो उन परिस्थितियों में भी हमको सब कुछ अतीन्द्रिय सुख का स्टॉक करना है, शांति का स्टॉक करना है, शक्ति का स्टॉक रखना है। कोई भी शक्तियों को और कोई भी खजानों को वेस्ट नहीं करना है, बचाना है। बाबा ने कई बार हम सबको कहा है एक नामी और इकोनॉमी, सबकी इकोनॉमी करे तो ही हम लोग बचा सकते हैं। जैसे दुनिया में भी लोग धनवान वही होते हैं जो बचा करके इकोनॉमिकली चलते हैं, जैसा आया वैसा खर्चा किया तो वो इतना धनवान नहीं बन सकते। तो पैसा पैसा वो लोग इकट्ठा करते हैं तब वो धनवान बनते हैं, क्योंकि कई लोग बहुत इकोनॉमी से चलते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे वो लोग सिर्फ धन के लिए इकोनॉमी करना जानते हैं, लेकिन समय, संकल्प, शक्तियां, गुण, ज्ञान का खजाना, इन सब खजानों को भी हमको इकोनॉमी से खर्च करना है ये नहीं जानते हैं। ये हम सबको बाबा ने बताया कि वर्तमान समय बहुत बहुत वैल्यूबल है। अभी हम सबका एक एक सेकंड वैल्यूबल है, मधुबन में तो और भी ज्यादा वैल्यूबल है। हम सभी मधुबन में बाबा लेके आए, जिसकी जिसकी लगन थी वो पहुंच गए, जाना ही है तो पहुंच गए। बाबा ने भी सबको अच्छी तरह से रिसीव किया और अपनी छत्र छाया में रखा है, ऐसे ही छत्र छाया में बाबा रखेंगे। तो हम सबको बाबा की छत्र छाया में ही रहना है। मधुबन में सवेरे स्टेज पर भी यही डायरेक्शन हम सबको मिल रहा था कि बाबा की सर्व शक्तियों की छत्र छाया हम सब के ऊपर रहे। हमेशा इसका अनुभव करना है कि हमारे ऊपर बाबा की शक्तियां बरस रही हैं, वही छत्र छाया हमको सेफ कर रही है और सेफ करेगी। और आंतरिक रीति से ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां क्या क्या हो रहा है, वो परिस्थितियों को जानने की हमें आवश्यकता नहीं है, उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना मालूम पड़ रहा है उतना बस है। बाबा ने सब कुछ बता ही दिया, त्रिकालदर्शी बाबा ने हमको पहले ही बता दिया कि ये सब होना है। फिर भी हम सबको आंतरिक रीति से बहुत शक्तिशाली रहना है, क्योंकि आंतरिक रीति से हम लोग शक्तिशाली नहीं रहेंगे तो परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते, जल्दी से हलचल में आ जाएंगे, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करना है हम सबको मालूम है। अभी हम सब कहाँ बैठे हैं, पूरा अभी कलयुग खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए गवर्नमेंट के रूल के साथ हमको चलना पड़ेगा बाह्य रीति से। बाकी हमें तपस्या का वातावरण रखना है, यहाँ है या घर में है, सेंटरों पर है, कहाँ पर भी है, वहाँ तपस्या का वातावरण हमको बना करके रखना है, क्योंकि बाबा कहते तपस्या से सब समस्याएं खत्म हो सकती हैं। कोई समस्या ऐसी नहीं रहेगी जो तपस्या से खत्म ना हो। इसलिए दादी प्रकाशमणि जी हमेशा कहती थी, करो तपस्या खत्म हो समस्या, तपस्या करने से समस्या खत्म हो जाएगी। और दादी जी का भी बहुत ये अनुभव रहा, कहां भी कुछ भी समस्या आती थी तो दादी जी योग बट्टी ही रखते थे। जैसे दिल्ली में भी 73 में मेला लगा था तो खाली करने के लिए गवर्नमेंट फोर्स कर रही थी, तो दादी ने उस समय एक स्टॉल में योग तपस्या शुरू की सारा दिन, फिर बाद में रात, सारी दिन सारी रात, और स्टॉल्स का काम चलता रहे और तपस्या चलती रहे। तो उस समय ऐसे ही हुआ, तपस्या के कारण ही हमारी विजय हो गई। तो आगे भी ये सभी परिस्थितियों को सामना करने के लिए हमें तपस्या को बढ़ाना है। क्या करना है, हम कुछ भी नहीं, तपस्या करनी है, शांति में बैठना है, अपने अंदर साइलेंस की पावर बढ़ानी है, शांति सुख आंतरिक सुख को बढ़ाना है, इस अनुभव में हमको डूबे रहना है। जो बाबा ने हमको दिया है उसका मनन करना है, उसके अनुभव में लीन होना है, क्योंकि बाबा हम सबको वतन में बुला रहे हैं, ये परिस्थितियां भी वतन में ले जाने के लिए हमें तैयारी कर रहे हैं कि आप तैयार हो जाओ। तो बाबा बुला रहा है तो जाने वालों को जाना है, इनविटेशन देने वाले तो देते हैं, लेकिन जाना तो हमको है। तो अव्यक्त वतन में जाने की तैयारी है ये सब, और सबको भी ले जाना है। बाबा कहते हैं कि अब मुक्ति धाम का दरवाजा खुलने ही वाला है, और सभी की जो मनोकामनाएं हैं, हमको मुक्ति चाहिए, बंधन मुक्त बनना चाहते हैं, सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। तो अभी हम सबको वो मुक्ति देने का कार्य भी हमको करना है। बाबा हम सबको यही कह रहे कि आप पहले मुक्त हो जाओ सब बंधनों से, इसीलिए हमें चेकिंग करना है इस समय पर कि मुझे क्या क्या बंधन है, क्या मैं एवर रेडी हूँ बाबा के साथ चलने के लिए, तैयार हूँ। बाबा ने हम सबको क्या क्या तैयारी करनी है वो तो पहले ही बता दिया है कि एवर रेडी रहना है, एवर रेडी रहना है तो नष्टो मोह बनना है। कहाँ कहाँ मोह, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे सेवा, सेवा का संबंध, सेवा की प्रवृत्ति, किसी भी जगह पर हमारा मोह न हो, अटैचमेंट न हो, बुद्धि न जाए कि उनका क्या होगा, वहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बाबा ने कहा सब अच्छा होने वाला है, कुछ भी होने वाला नहीं है, सब अच्छा होने वाला है। अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होने वाला है। तो ऐसे परिस्थितियों में सबको हम अपने नयनों से, हम अपने संपर्क से, सबको जो उनको चाहिए वो हमको देना है। उनको दवाई भी नहीं मिल रही है, हम जो भी उनको देते हैं उनके द्वारा उनकी तबीयत ठीक हो सकती है, और कोई दवा दुनिया में नहीं है शांति के सिवाय। सभी को शांति की दवा देनी है और दुआ देनी है। बाबा कहते दुआ देना, दुआ लेना, शांति की दुआ सभी मांगते हैं, हमको शांति चाहिए। दुनिया में परिस्थितियों से ज्यादा अशांति है, परिस्थिति में जल्दी अशांत हो जाते हैं, लेकिन जब हम शांति की दुआ और शांति की दवा सबको देते हैं तो सब परेशानियां खत्म हो जाती हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं आपका जो स्वधर्म है शांति, तो शांति का स्टॉक जमा करो, जल्दी कोई भी परिस्थिति आती है तो जल्दी अशांत नहीं होना है हमें। परिस्थितियों में हम जल्दी हलचल में आ जाते हैं और जो शांति वाली स्थिति है वो नीचे आ जाती है, लेकिन हमको नीचे नहीं आना है, परिस्थितियों में भी ऊपर ही रहना है, अपनी मानसिक स्थिति अच्छी तरह से बना करके रखनी है ताकि परिस्थितियों में हलचल में ना आए। हलचल में हम तब आते हैं जब हम कमजोर होते हैं, तो हमको कमजोर बनना नहीं है और हलचल में नहीं आना है। अचल अडोल स्थिति जो बाबा ने हमें बताई है, जो होगा वो अच्छा होगा और जो कल्प पहले हुआ है वही होना है। अभी बाबा ने इतना विस्तार से हमें समझाया है, अभी देखो ये जो कोरोना का वायरस है इसके कारण कई परिस्थितियों में चेंज आ रही है। ऐसा लगता है कि दुनिया का वातावरण सतोप्रधान पवित्र बनने वाला है, क्योंकि सिर्फ दीपावली पर लक्ष्मी का आवाहन करते तो ही कितनी सफाई मेंटेन करते हैं, बहुत सफाई रखते हैं, क्योंकि लक्ष्मी का आवाहन सिर्फ चित्र का आह्वान करते हैं। अभी तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण सृष्टि पर आने वाले हैं, प्रैक्टिकली सभी देवताएं पैर रखने वाले हैं, तो कब पैर रखेंगे, जब सारी दुनिया पवित्र बन जाएगी, वातावरण शुद्ध हो जाएगा, सभी का खान पान पवित्र हो जाएगा। और ऐसे भी व्यसनों के कारण भी ये वायरस बढ़ता है, तो सब व्यसनों से भी मुक्ति सबको मिल जाएगी। तो हम लोग जो पहले सेवा करते थे अब वो ऑटोमेटिक सेवा हो जाएगी। बाबा ने कहा आपको मदद देगी, सभी परिस्थितियां आपको सहयोग देगी आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि हम लोगों ने जो सेवा की है और जो रह गई है वो परिस्थितियों के द्वारा सेवा होगी। और अभी जो परिस्थितियां हैं इसमें बहुत लोग डिप्रेशन में भी जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि आंतरिक स्थिति कमजोर है। क्या होगा, कैसे होगा, इस उलझन के कारण भी बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। लेकिन बाबा के बच्चे सभी मजबूत हैं, आंतरिक स्थिति शक्तिशाली है, इसलिए हम सब निश्चिंत यहाँ बैठे हैं। कोई को कोई हालचाल नहीं है ना, क्योंकि बाबा की छत्र छाया में बैठे हैं और अच्छे वातावरण में बैठे हैं। बाबा ने हम सबको सेफ स्थान पर पहुंचा दिया है, इसलिए हमें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जितना हम निश्चिंत रहते हैं उतना हम अच्छी तरह से एकाग्रता से तपस्या कर सकते हैं। तो अभी बहुत काल का पुरुषार्थ जो बाबा ने हमें बताया, अभी हमको समय मिला है। अभी सभी सुन रहे हैं ना, सब कुछ बंद हो रहा है, कहीं जाना नहीं है, हर एक को अपने स्थान पर रहना है, तपस्या करनी है। सबको तपस्या का चांस मिला हुआ है, समय मिला हुआ है। तो बाबा ने कहा था कि आगे चल करके सिर्फ अपने प्रोग्राम्स ही चलेंगे और कोई प्रोग्राम्स नहीं चलेंगे। अब ऐसा दिखाई दे रहा है आगे चल करके, अभी भी देखो सा गवर्नमेंट ने सारे प्रोग्राम्स रद्द कर दिए हैं, उनका जो खुद का प्रोग्राम है वो भी उन्होंने रद्द कर दिया है। अभी देखो माउंट आबू में हम सभी यहाँ शांति वन में बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, कोई हलचल नहीं है। तो ये तो वातावरण को शुद्ध बनाने वाली संस्था है, सभी को वैसे मालूम है, इसलिए वो थोड़ा शांति में ही है, हमको सहयोग दे रहे हैं। तो हम सबको भी ये सहयोग देना है, सारे देश सारे विश्व को, कि जो भी परिस्थिति छाई हुई है अपने देश के ऊपर विश्व के ऊपर उसको खत्म करना है, ऐसी तपस्या करनी है। हम अपना भी लाभ लें और अनेकों को भी इसका लाभ दें, ऐसी शक्तिशाली तपस्या हमको यहाँ करनी है। यहाँ सब प्रकार से बाबा ने हम सबको अच्छी तरह से रखा है, कोई कमी नहीं की है, क्योंकि बाबा के बच्चों ने जो तपस्या की है, जो सेवा की है, उसका फल बाबा दे ही रहा है। और वैसे भी बाबा दाता है, किसी का किया हुआ रखता नहीं है, जिसने जितना किया उसको वापस यहाँ ही दे रहा है और देगा, हम सभी उसका फल ले रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आप सेवा नहीं कर रहे हो, सेवा का मेवा खा रहे हो। हम लोग सेवा कहाँ कर रहे हैं, कुछ भी कहाँ भी ऐसा लगता नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा ले रहे हैं। कई जगह पर सेवा में तकलीफ नहीं होती, वहाँ पिकनिक जैसा लगता है, क्योंकि हमारे दैवी परिवार का वातावरण ऐसा होता है, सब खुशी में रहते हैं। तो जहाँ खुशी है वहाँ पिकनिक का वातावरण बनेगा, कितनी भी कठिन सेवा हो वो सहज हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि हम सब आपस में परिवार का प्यार और परिवार की जो शुभ भावनाएं हैं वो हर कठिन परिस्थितियों को आसान कर देती हैं, कठिन प्रकार की सेवाओं को भी आसान कर देती हैं। ये सब हम अनुभव कर रहे हैं। और भी आगे चल करके हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली इतना बनाना है, इसीलिए वहां पर देवताओं को आप देखेंगे, कईयों को 8 भुजाएं, कईयों को 16 भुजाएं भी देते हैं। अपने अंदर कितनी शक्तियां हैं, 16 है या और भी हैं? और भी हैं। वो दिखाने के लिए वो लोग 16 भुजाएं दिखाते हैं, शक्तियों को भुजाओं के रूप में उन्होंने बताया है। 8 शक्तियां तो मेन है, बाकी सर्व शक्तियां हैं। तो हम सभी सर्वशक्तिवान बाप की संतान होने के कारण सर्व शक्तियों को भुजाओं के रूप में बताया है। अब इन परिस्थितियों में हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। वैसे भी कई परिस्थितियों ने बाबा ने हमको बचाया, तो सारी दुनिया पहचानती नहीं है कि इनको बचाने वाली ईश्वरीय शक्ति है, वो समझते हैं कोई शक्ति है इनको बचा रही है। आप सबको भी देखने वाले, आपके संबंध संपर्क में आने वाले भी बोलते हैं कि आपके बाबा ने आपको बचाया। लेकिन कौन बाबा है ये, वो निराकार बाबा को पहचानते नहीं है, क्योंकि उनको साकार को देखने की आदत है। इसलिए हमारे निराकार बाबा को, अपने बाबा को पहचान नहीं रहे हैं। लेकिन अभी हमको बाबा को प्रत्यक्ष करना है, किसी हालत में सबको बताना है निराकार परमपिता परमात्मा हम सबका साथी है, वो हमको बचा रहे हैं, उनकी छत्र छाया में हम सब है। दुनिया पता नहीं कब ये बात को पहचानेगी, लेकिन हम सबको अपने चेहरे के द्वारा, स्थिति के द्वारा सबको पहचान देनी है। जैसे आप देखेंगे कि मीरा को याद करते ही कौन याद आता है, कृष्ण याद आता है। तो हमको देखते ही शिव बाबा की याद आनी चाहिए, शिव बाबा की याद आनी चाहिए। शिव बाबा ही ये सब करा रहे हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि ये सब मिलकर के कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हाथ पैर हिला रहे हैं। कराने वाला, करण करावन हार निराकार बाबा ही है, कमाल उनकी है। ये पहचानते नहीं है लोग, लेकिन अभी पहचानने का समय आ जाएगा। आखिर वो लोग देखेंगे कि देहदारी तो कुछ करते नहीं है, तो हम सब का बैकबोन जो है अव्यक्त बाप दादा है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा है, दोनों अव्यक्त हैं। इसलिए हम सबको अभी देखेंगे 20 तारीख को अव्यक्त बाबा को हम सब मिलेंगे, देखेंगे भी। बाबा हम सबको मिले बिगर रहेगा नहीं, सूक्ष्म रूप में हम सबके साथ है, अभी भी हम सबकी पालना कर रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी मधुबन में हम आते हैं तो कोई बड़ा दिखाई नहीं देता, लेकिन सब कार्य जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि बाबा की प्रेजेंस, बाप दादा हाजिर है, और हमारी जो दादियां हैं वो भी अव्यक्त रूप में हाजिर हैं, रक्षक के रूप में, यज्ञ के रक्षक के रूप में। इसलिए कोई भी ऐसा नहीं समझता कि यहाँ हमको कोई अनुभव नहीं हो रहा है या बाबा नहीं आ रहा है, कोई नहीं बोलता, क्योंकि बाबा आ रहा है, हमारे साथ है, हमारी पालना कर रहे हैं ज्ञान योग से। हम उनकी मुरली सुनते हैं तो ऐसा लगता है बाबा आ गया, सचमुच बाबा सामने है अव्यक्त रूप में, क्योंकि हम सबको साकार में देखने की आदत हो गई थी, तो बाबा को हम सबको न्यारा करना था, इसलिए ये परीक्षाएं हम सबके सामने आई, ताकि हमको भी अव्यक्त होकर के अव्यक्त बाबा से मिलन मनाना है। कब तक हम व्यक्त रूप में मिलन मनाएंगे, क्योंकि शरीर का भी लिमिटेशन होता है, हम सभी शरीर से अलग आत्माएं हैं, तो बेहद रूप में बाबा सेवा देने के लिए हम सबको अव्यक्त बनाने के लिए ही अव्यक्त हुआ है, ऐसे ही नहीं हुआ है, हम सबको पाठ पढ़ाने के लिए। अभी सिर्फ बोलने से हम इतना नहीं हो सकते हैं, अभी प्रैक्टिकली अव्यक्त होंगे तो ही अव्यक्त बाबा के साथ मिलन का अनुभव अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए ये चांस हम सबको बाबा ने दिया है, इसलिए बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया है। इस प्रकार से भी हमें तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को साकार की ही आदत हो जाएगी, इसीलिए साकार से अलग अव्यक्त रूप में बच्चों को स्थित रहना है और अव्यक्त बाबा से मिलन मनाना है। कितना भी हम तपस्या कर रहे हैं, फिर भी शरीर को भूलने का अभ्यास और ज्यादा करना है, इसमें स्पीड बढ़ानी है, अशरीरी स्थिति के अभ्यास के लिए स्पीड बढ़ानी है, या अशरीरी स्थिति का अभ्यास माना अव्यक्त स्थिति का अभ्यास ही हमें आंतरिक रीति से शक्तिशाली बनाने वाला है। बाकी हम कितना भी साकार रूप में रहे, साकार रूप में सेवा करें, ये हमें शक्तिशाली बनाने वाली नहीं है। हमें शक्तिशाली बनाने वाली स्थिति अशरीरी स्थिति, अव्यक्त स्थिति, क्योंकि देह तो हमको दिखाई देती नहीं है, लेकिन आत्मा अव्यक्त रूप में है, हमारा बाबा भी अव्यक्त है, अव्यक्त रूप में है, अव्यक्त रूप से पालना दे रहे हैं, हमें उसका अनुभव करना है। अव्यक्त रूप का अनुभव हमें कराने के लिए ही बाप दादा ने ये सीजन रखी है। यहाँ सामूहिक रूप में हम सबको वो स्थिति का अभ्यास करने के लिए, वहां तो करते हैं छोटे पैमाने पर, कम लोग मिल करके संगठन में बैठ करके करते हैं, लेकिन यहाँ बड़ा संगठन होता है, यहाँ का वातावरण अलग होता है। अभी मधुबन में कभी थोड़ा देरी से आते तो ऐसा लगता है बहुत दिन हो गए, हमको जाना है, क्योंकि ये मधुबन एक जादू की नगरी है। और जो रिफ्रेशमेंट हमको यहाँ कदम रखने से मिलती है, वहां पर इतना नहीं मिल सकती, मिलती है लेकिन जो यहाँ मिल सकता है वहाँ वो नहीं मिल सकता। इसलिए हम जितना दिन हम यहाँ रहते हैं, एक एक सेकंड का, एक एक घंटे का अपना चार्ट बनाना है कि हम स्वमान में हैं। बाबा ने जो पांच स्वरूपों का अनुभव बताया कि पांच स्वरूपों का अनुभव कम से कम सारे दिन में 8 बार करने के लिए बताया, तो पांच पांच मिनट ये जो पांच स्वरूपों का अनुभव है हम एक घंटा भी कर सकते हैं। उसकी स्थिति में हम ज्यादा समय रहे, क्योंकि योग माना ही कोई भी एक संकल्प, एक अनुभव में या कोई भी स्थिति में हमको अपने को टिकाना, योग माना वही है। इसीलिए पांच स्वरूपों का जो अनुभव है, जो हमारे संस्कारों को बदलने वाला है, क्योंकि पांच स्वरूपों में हमारी जो अनादि स्थिति है, आदि स्थिति है, मध्य स्थिति है, अंतिम ब्राह्मणों की, ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने की जो स्थिति है, उससे हमारे पुराने संस्कार मर्ज हो जाएंगे, और जो दैवी संस्कार है, जो हमारे आदि संस्कार है, वो इमर्ज हो जाएंगे। उसके लिए बाबा ने ये पांच स्वरूपों का अनुभव हमें बताया, बार बार करने के लिए हमें कहा है। पांच स्वरूपों का अनुभव सभी कर रहे हैं ना, यहाँ पर ज्यादा करना, क्योंकि बाबा ने कहा कि हम आगे आएंगे तो आपको पूछेंगे कितनी बार किया कि नहीं किया, रिजल्ट लेने के लिए भी बाबा आएंगे बोला। और बाबा जो बोलता है वो कभी भूलता नहीं है। कब व्यक्त रूप में रिजल्ट लेने के लिए आएंगे, कभी स्थूल रूप में भी रिजल्ट अभी देनी पड़ रही है, अभी मालूम पड़ता है ना ये परिस्थितियों से, हम अपनी स्थिति को कहाँ तक बाबा ने जो कहा है उस अनुसार बनाया है, क्योंकि हम सबको रिजल्ट देनी है बाबा को, हम सबका टीचर शिव बाबा है। तो बाबा ने इस बीच में मुरली में कहा, टीचर जो कहता है वैसा करना है, नहीं करेंगे तो फायदा क्या होगा। तो हमारा टीचर हमको बताया कि पांच स्वरूपों का जो अभ्यास है रोज 8 बार करना है, ये हमारा होमवर्क है, और बहुत लंबा होमवर्क है ये एक दो में खत्म होने वाला, क्योंकि हमेशा के लिए हमें ये करना है होमवर्क। तो जो आदि रूप की स्थिति है वो संपूर्ण सतो प्रधान स्थिति है। तो बाबा जो हमको बताते हैं ये पांच स्वरूपों का अनुभव, उससे हम प्रकृति को भी हम योग का दान, दान पवित्रता का दान मिलता है। ये प्रकृति से ही परिस्थिति है, प्रकृति से संबंधित है, इसीलिए हमें प्रकृति के वातावरण को शुद्ध सतो प्रधान बना है, और ज्यादा प्रकृति को पवित्रता का दान हमें करना है, पवित्र बनाना है। जितना पांच तत्व पवित्र होते जाते हैं, ये वायरस से हम बचे रहते हैं। तो प्रकृति जीत बनने के लिए ने हमें ये परिस्थिति दी है। प्रकृति जीत बनना माना पांच तत्वों से बने हुए शरीर से न्याय, ये प्रकृति से बना हुआ शरीर है। और बाबा ने कहा कि प्रकृति आपको बहुत सहयोग देती है, दे रही है ना, अभी सहयोग दे रही है, दासी नहीं है फिर भी हमारी सही। तो प्रकृति को हम मुख के द्वारा ज्ञान नहीं सुना सकते हैं, प्रकृति को हम वाइब्रेशंस दे सकते हैं, पवित्रता वाइब्रेशंस को ग्रैस्प करती है प्रकृति। तो हमारे संकल्पों में, हमारे बोल में, संपर्क संबंध में और भी पवित्रता के परसेंटेज को बढ़ाना है, ताकि हम प्रकृति को भी पवित्रता का दान दे सके। प्रकृति संपूर्ण सतो प्रधान और पवित्र बन जाए, जी ये वायरस सारे विश्व से खत्म हो सकता है। तो हम सबको विश्व को देना है, अपने आप को भी सहयोग देना है, क्योंकि हम सब का जो टाइटल है विश्व कल्याणकारी का टाइटल है ना। हम सबका कौन सा टाइटल है? विश्व कल्याणकारी। तो सिर्फ हम अपने देश को ही नहीं, हमारे अपने स्टेट को ही नहीं, सारे विश्व को पवित्रता का दान। पांच तत्व तो विश्व और ये दुनिया है ही पांच तत्वों वाली दुनिया, इसीलिए प्रकृति में हम रहते हुए, प्रकृति से सेवा लेते हुए हमें प्रकृति की सेवा करनी है। बिना पवित्रता के हम प्रकृति की सेवा नहीं कर सकते। एक शांति और दूसरा पवित्रता, ये दोनों शक्तियों से हम प्रकृति की सेवा कर सकते हैं, प्रकृति को सतो प्रधान बना सकते हैं। तो जिसको हम योग बल से बढ़ा सकते हैं, शांति की शक्ति को, पवित्रता के बल को हम योग से ही हम अपने अंदर बढ़ा सकते हैं। तो यह समय के अनुसार एक तो प्रकृति को शक्तिशाली बनाना है, हमारी आंतरिक स्थिति शक्तिशाली बने, ताकि जो भी घबरा रहे हैं उन्हें भी हमें धीरज दे सके, क्योंकि आपके जो भी संबंधी हैं सभी ज्ञान में नहीं है, तो उन सबको आपको धीरज देना है कि कुछ नहीं, आप सब शुभ को याद करो, कम से कम अभी उनको चांस है ना बोलने का, भी नहीं इतने समय तक वो सुनते नहीं थे, लेकिन अब तो सुनेंगे, क्योंकि परिस्थितियां उनके उनको नरम कर रही हैं ताकि सुन सके। तो वो लोग इसका फायदा लेंगे और करेंगे, इससे पहले नहीं सुनते थे लेकिन अभी सुनेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो भी परिस्थितियां हैं ये सेवा का भी चांस है, तपस्या का भी चांस है, और बाबा की प्रत्यक्षता का भी चांस है। हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते, देखो हम बाबा की छत्र छाया में सेफ है, आप लोग भी बाबा की छत्र छाया में आ जाओ, सेफ हो जाएंगे। अभी थोड़ा भी वो लोग बाबा से अपना संबंध जोड़ते हैं तो बाबा से बहुत शक्तियां उनको भी मिलती हैं, क्योंकि अभी बाबा सबके लिए तैयार है, सबको देने के लिए ही आया है। ये परिस्थितियां हमें दाता बन देने वाली, देने के कार्य में बिजी कर रही है, और बाबा तो है ही सबको देने वाला दाता। तो ये जो परिस्थिति आई है इससे सेवा भी बहुत होगी और हमारी तपस्या भी होगी, क्योंकि सभी कार्यों से हम फ्री हो रहे हैं, तो तपस्या के लिए समय नहीं मिलता था तो अभी मिल गया। सभी को अपने अपने कार्य में हल्का होने का जो चांस मिला है वो तपस्या के लिए मिला है। तो इसलिए हम सबको बैठ करके शुद्ध संकल्पों की तपस्या करनी है, सभी को शुभ भावना, शुभ कामना का भी दान देना है, ताकि वो बाबा के समीप आ सके। अब इस प्रकार से ज्यादा लोग बाबा के संपर्क में, बाबा के बच्चों के संपर्क में आएंगे, जो भी हम सबके संपर्क में आएंगे उनको हम देते जाएं, हमारे अंदर भरा हुआ तो ही हम दे सकते हैं। तो इसलिए हम सबको बाबा ने भरने के लिए यहाँ भेजा है, यहाँ हम सबको भरना है। जैसे वहाँ पर देखिए, कईयों को आठ दिन में एक ही बार मार्केट जाने का टाइम मिलता है, तो एक बार जा करके आठ दिन का राशन लेकर के आते हैं, कई एक मास में एक बार जा करके एक मास का राशन, एक वर्ष का राशन ऐसा लेकर के आते हैं। तो हमको भी बाबा मधुबन में भेजा इसलिए कि भर भर करके फिर वापस जाएंगे, बरसाएंगे, सबको ये जो भी भरा है सबको देंगे। तो क्यों देने के लिए ही बाबा ने हम सबको यहाँ बुलाया है। तो इसलिए जब तक हम मधुबन में हैं, तब तक हम अपना समय वेस्ट किए बिना सिर्फ तपस्या में, एकाग्रता में बैठना है, क्योंकि यहाँ दूसरा काम नहीं है। तो बाबा ने हम सबको यहाँ तपस्या के लिए बिठाया है, तपस्या से हम अपने आप को आंतरिक शक्ति से शक्तिशाली बना सकते हैं, क्योंकि अभी सबकी नजर हम सबके ऊपर है कि ये क्या कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सबकी नजर आपकी तरफ है और आपकी नजर बाप की तरफ है। वो सब हमको देख रहे हैं, हम बाबा को देख रहे हैं। बाबा हम सबको देख रहा है कि बच्चों को मैंने इतना तैयार किया है, बच्चे क्या कर रहे हैं। माँ बाप बच्चों को तैयार करके भेजते हैं बाहर, अभी अपना कमाओ, आप अपनी जिम्मेवारी संभालो। ऐसे ही बाबा ने हम सबको तैयार किया और हम सबके ऊपर जिम्मेवारी दिया कि अभी आप सब हल्के होकर के अपनी जिम्मेवारी को संभालो। ये हमारी जो जिम्मेवारी है विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन हल्की डबल लाइट करने वाली है, बोझ वाली जिम्मेवारी नहीं है और परेशान करने वाली फिकर वाली जिम्मेवारी नहीं दी है बाबा ने, हल्की जिम्मेवारी दी है ताकि हम सहज रीति से निभा सके। इसको निभाने के लिए हमें आंतरिक रीति से डबल लाइट रहना है। एक तो मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, एकदम हल्की से हल्की हूँ और कोई बोझ मेरे ऊपर नहीं है। इस बीच में अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था बच्चा बन जाओ तो सब बातों से बच जाएंगे। बच्चे लाइट होते हैं, उनको कोई चिंता नहीं होती क्योंकि हमारे बड़े बैठे हैं, इसलिए वो लोग चिंता नहीं करते। इसलिए हम सब के ऊपर भी बाबा बैठा है, सबसे बड़ा है, इसलिए हम सबको बाबा ने निश्चिंत कर दिया। आप लोग कुछ नहीं करो, डबल लाइट होकर के खेल करो, साक्षी होकर के रहो। इस दुनिया में खेल करना माना ये सभी खेल अनुभव हो रहा है। बाबा ने कहा जितना आपकी स्थिति शक्तिशाली रहेगी ये सब मनोरंजन के खेल लगेंगे। मनोरंजन में खुशी होती है, इसलिए ये भी ऐसे ही खेल लग रहा है या परिस्थिति लग रही है। बहुत मुश्किल है ऐसा कोई नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे ना, इसलिए हल्के होके बैठे ऐसे लग रहा है। सभी हल्के हो गए हैं बाबा के पास, सभी बाबा के बच्चे बन गए हैं। तो हम सभी भी बाबा के बच्चों को सिर्फ एक हल्की सी जिम्मेवारी विश्व परिवर्तन की। विश्व परिवर्तन में अभी मनसा के द्वारा हमें काफी सहयोग देना है। हमारी मनसा जितनी शक्तिशाली रहेगी उतना हम विश्व के परिवर्तन में सहयोगी बन सकते हैं। अगर मनसा शक्तिशाली नहीं है तो विश्व परिवर्तन में हमारा क्या सहयोग रहेगा, हम कैसे दे सकेंगे। तो विश्व के परिवर्तन में सहयोग देना माना विश्व की आत्माओं के जरूरतों को पूरा करना। अभी मनुष्य आत्माओं की जरूरी चीजें क्या है, उनको मन की शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए। ये सब बाहर से खरीदने वाली चीजें नहीं, सबके पास सब साधन है अभी ये नहीं है। धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो बाबा ने जो कहा आपको हिम्मत के पैर देने पड़ेंगे। तो अभी हम सबकी ये सेवा है सभी के अंदर हिम्मत को भरना, सबको धीरज देना, शांति देना, ये हम सबका फर्ज है। अभी इसको पूरा करना है क्योंकि हम सभी आत्माओं को बाबा ने जो विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी है उसको निभाना है और पूरा भी करना है। तो विश्व में कितनी आत्माएं अभी ऐसी रहेगी वो भी अभी शांति में बैठ करके सोच रही है कि हमको कुछ मिले, तो वो हम जब देते जाएंगे तो उनको सबको मिलता जाएगा। वाइब्रेशंस के द्वारा भी कुछ लोगों को हम देते जाएंगे क्योंकि ज्ञान तो हम सारे विश्व को सुना नहीं सकते हैं, तो हम मनसा के द्वारा ही सारे विश्व में पहुंच सकते हैं। और जितना जितना हम डबल लाइट रहते हैं उतना फरिश्ता स्थिति का अनुभव करते हैं, फरिश्ता स्थिति के द्वारा वहां पहुंच जाते हैं। क्योंकि फरिश्तों का कर्तव्य क्या है, जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको सहयोग देना, उनके कार्य में हाथ बांटना। क्योंकि हम कई कहानियों में सुनते हैं कि फरिश्ते क्या करते हैं, दुनिया में जो भी अच्छे कार्य करने वाले हैं उनको सहयोग देते हैं, उनका हाथ बटाते हैं। वो बताते हैं ना, एक जंगल को आग लग गई थी, वो जो चिड़िया चोंच में पानी भर करके वो जंगल के आग को बुझाना चाहती थी, तो एक फरिश्ता आया वो फरिश्ता करके, तुम क्या कर रही हो? वो चिड़िया को पूछा, चिड़िया ने बोला कि ये जो जंगल को आग लगी हुई है उसको बुझाने का कार्य कर रही हूँ, तो तुम्हारे एक एक बूंद से थोड़ी आग बुझेगी। तो चिड़िया बोलती है कि कम से कम आग बुझाने वालों की लिस्ट में मेरा नाम रहेगा, आग को बढ़ाने में तो मेरा नाम नहीं रहेगा, इसलिए मेरे से जितना हुआ मैं कर रही हूँ। तो फरिश्ते ने बारिश कराई और वो आग बुझ गई। तो फरिश्ते माना ऐसा सबको सहयोग देने का कार्य करने वाले। तो वो फरिश्ते कौन है? हम सभी। तो हम सभी विश्व परिवर्तन के कार्य में जो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम अपना हाथ बंटाएं, हम फरिश्ते के रूप में वहां पहुंच जाएं, उनके कार्य में हम मदद करें, क्योंकि हमारा भी वही कार्य है, विश्व परिवर्तन का कार्य और विश्व को स्वर्ग बनाने का कार्य। स्वर्ग बनाना माना हर एक घर को स्वर्ग बनाना। अभी बी के जो भाई बहने हैं, बाबा ने ये नियम बनाया कि प्रवृत्ति में रहो, प्रवृत्ति में रहते हुए अपनी प्रवृत्ति को स्वर्ग जैसा बनाओ। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि प्रवृत्ति में आप बहुत सालों से रहते हैं लेकिन आपका ज्ञान कोई सुनने के लिए वो तैयार नहीं है, लेकिन आप जो रह करके वाइब्रेशन देते गए लेकिन आप वातावरण ऐसा बनेगा वो सब आपका सुनेंगे, आपकी बात सुनने के लिए वो तैयार रहेंगे। अभी आप बोलो, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आपको प्रवृत्ति में रहना है। आप देखो कि आपको देख के ही लोग ज्यादा आते हैं, हमको देख करके कम आते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते कि सब छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने प्रवृत्ति में रहने वालों के लिए बहुत बड़ी सेवा दी है, क्योंकि आपके संपर्क में ज्यादा लोग आते हैं, आपके रिलेटिव आदि सभी आपके संपर्क में आते हैं, तो उनको आप ये दे सकते हैं। आप सभी को यहाँ पर लेके आते हैं लेकिन सब आपके पास आते हैं, इसलिए प्रवृत्ति में रहते हुए भी प्रवृत्ति को श्रेष्ठ बनाना है, संबंधों को निभाना है, ताकि हमारे ऊपर कोई उंगली उठा ना सके कि ये लोगों ने उनको छोड़ा इनको छोड़ा। इसलिए बाबा छोड़ने के लिए मना करते हैं, निभाने के लिए ही कहते हैं, निभाते हुए ही आप नष्टो मोह बन सकते हैं। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ बाबा ने हम सबको कराया, सबके साथ रहो लेकिन नष्टो मोह बन करके रहो। आजकल की परिस्थितियां ऐसी हैं, सहज रीति सभी नष्टो मोह हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो आपको सहज रीति नष्टो मोह बना रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। नहीं तो अगर बहुत ज्यादा प्यार से आपकी सेवा करेंगे तो आपका मोह खत्म होना मुश्किल है, लेकिन जो वो लोग हमारे से विरोध कर रहे हैं, हमारी सेवा नहीं कर रहे हैं या कुछ सहयोग नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे हम इजीली नष्टो मोह हो सकते हैं। ज्यादा मीठे रूप में संबंध में आते हैं तो मुश्किल है। इसीलिए जो भी परिस्थितियां जैसी भी हैं, उसमें रहते प्रवृत्ति में रहते हुए भी बाबा ने हम सबको नष्टो मोह बनने के लिए कहा है। नष्टो मोह बनना माना जितना जितना हम उन सबको आत्मा के रूप में देखते हैं, बाबा के बच्चों के रूप में देखते हैं, मेरा नहीं समझते तो नष्टो मोह सहज है, सब बाबा के बच्चे हैं, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ यहाँ पर। तो बाबा ने कहा आप जहाँ भी रहते हो वहाँ निमित्त होकर के रहो, साक्षी होकर के रखो, ताकि आप नष्टो मोह हो सको। तो हमको बाबा ने प्रवृत्ति में रहते हुए न्यारा बनना सिखाया है, प्यारे बनने का आधार बाबा ने कहा न्यारा बनना, क्योंकि सबका प्यारा बनना है लेकिन देह से न्यारा और बाप का प्यारा को बनना है। जितना हम जितना देह से न्यारे बनते जाते हैं उतना उतना हम बाबा के प्यारे, बाबा के समीप आते जाते हैं। बाबा के समीप आना माना बाबा के समान बनना, बाबा की समीपता हमें समानता में ले आती है, संपन्नता को नजदीक लाती है। इसीलिए देह से न्यारा, देह संबंधों से न्यारा, सब बातों से न्यारा, कहां भी हमारा इंटरेस्ट ना हो, स्पेशली ये क्या है वो क्या है, हर चीज को जानने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। हमको क्या जरूरत है, हमको जितना जरूरी है जो बाबा ने ज्ञान दिया उसी की आवश्यकता है। सब से ज्ञान यहाँ ज्ञान और योग से संबंध वाली नहीं है, उससे कोई हमारा ज्ञान योग से संबंध नहीं है। तो इसलिए सब बाबा ने कहा बाप को जानना मना सब कुछ जान गए, एक बाबा को पहचानने की आवश्यकता थी, बाकी कोई आवश्यकता हमें है नहीं। है कुछ जानने के लिए, कुछ भी नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं है। हम सबको अच्छी तरह अनुभव है दुनिया में, कुछ समझ जो समझ रहे हैं। बाबा कहते जैसे गन्ने का छिलका चूस रहे हैं, छिलके में क्या रहेगा, कुछ भी नहीं है। अभी भी दुनिया में कोई सार नहीं है, हम सबको अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, देखने से सुनने से ही मालूम पड़ता है। तो हमें आंतरिक रीति से शक्तिशाली रहना है, अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है, हलचल में नहीं आना है, तो हम वातावरण को शक्तिशाली बना सकते हैं। अगर हलचल में आते हैं तो आत्मा कमजोर होती है, तो कमजोर आत्मा शक्तिशाली वातावरण नहीं बना सकती है। इसीलिए हमें हलचल में आकर के अपने आप को कमजोर नहीं करना है। ये क्या, ये क्यों, इन बातों में हमें ज्यादा विस्तार में नहीं जाना है, सार में हमको समझ लेना है कि कैसे कैसे बाबा ने बताया, जो बताया वो हो रहा है। इसलिए हलचल में नहीं आना है, हमारे अमृत वेले के योग को पावरफुल बनाना है, और सारे दिन की दिनचर्या में जो हमारा समय मिले उसमें ज्यादा से ज्यादा तपस्या करनी है। जितना हम तपस्या करते हैं उतना हम शक्तिशाली रहते हैं, वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, हम प्रकृति से न्यारे हैं, पांच तत्वों से भी न्यारे आत्माएं हैं, शक्तिशाली आत्माएं हैं। तो हमारा प्रभाव वातावरण के ऊपर हो, वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर न हो, उसके लिए सिर्फ तपस्या ही काम आती है। तो बाबा कहते त्याग से तपस्या, जितना त्याग नहीं तपस्या, त्याग माना व्यर्थ बातों से हमें त्याग करना है, व्यर्थ बातों को न सुनना है, न देखना है, न करना है। जितना हम व्यर्थ से न्यारे रहेंगे उतना हम एकाग्र हो सकेंगे, शक्तिशाली स्थिति बनाते हैं तो हम कैसे भी परिस्थिति का सामना सहज रीति से कर लेते हैं, और जितना हम परिस्थितियों का सहज रीति से सामना करते हैं उतना हम शक्तिशाली रहते हैं, वातावरण को भी शक्तिशाली बनाते हैं। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए हमको याद आना चाहिए अपना घर जल्दी आना है, वो घर बुला रहा है, बाबा हम सबको बुला रहा है, हमें तैयार होके आने के लिए निमंत्रण दे रहा है। बाबा तो हमेशा मुरली में कहते कि बच्चे अभी मुझे नहीं बुलाओ, आप आओ। तो हम सबको वतन में बुलाने का जो बाबा का जो प्लान है वो नजदीक आ रहा है, इसलिए ये परिस्थितियां हमें मदद दे रही है कि आप सब एवर रेडी रहो, अभी घर जाना है। ओम शांति।